الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. یہ آیات اس پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی عید کی مناسبت سے، کیونکہ عید میں بھی عید کا ذکر ہے اور ہم نے بھی عید منائی تھی، تو اس میں کچھ بات باقی رہ گئی تھی اور اس میں سے اصل میں ایک خاص بات عرض کرنی ہے. ان کی عید اپنی الگ تھی، ہر قوم کی عید الگ رہی. آدم علیہ السلام کی عید توبہ قبول ہونے پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کو نجات ملی انہوں نے خوشی منائی، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عید تھی جس دن مائدہ نازل ہوا، دسترخوان. مائدہ کیا تھا؟ کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان. تو فرماتے ہیں جب کہا حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ چلے آ رہے تھے، یہ متبعین ہو کے بھی ذرا کمزور کمزور سے تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اللہ سے بات کرنے، ملاقات کرنے، اور یہاں یہ گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئے، اتنے بیچارے کچے سے تھے. تو یہ حواری بھی ایسے ہی تھوڑے سے کچے تھے. تو انہوں کہنے لگے حل یستطیع ربک ان ینزل، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا، کہ وہ نازل کرے ہم پر مائدہ، ایک خان خانوں سے بھرا ہوا، من السماء آسمان سے، ہمیں پکانا نہ پڑے بلکہ آسمان سے وہ نازل کرے. ایک تو یہ کہنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، رب تو ہر کام کر سکتا ہے، یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. لیکن امت کو یہ طرز گفتگو پسند نہیں تھی. بھائی باہر جا کے نماز پڑھو، وہاں باہر جاؤ جہاں سے نظر نہ آئے، یہاں کام ہو رہا ہے اس میں خلل نہ ڈالیں. جزاک اللہ. تو حضرت کی امت فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا میں جا سکتا ہوں، ایسے کہتے ہیں میں جا سکتا ہوں، آئی کین گو، تو یہ طریقہ وہی عیسائیت والا ہے کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا بھائی، رب تو قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ طریقہ اجازت لے، حضرت تانی فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پیر سلامت ہیں، آپ کیوں نہیں جا سکتے. اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں، یہ طریقہ. میں جا سکتا ہوں، یہ وہی طریقہ انگریزی اور عیسائیوں کا. تو بہرحال کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کہنا، لیکن انہوں نے جو یہ اختیار کیا یہ وہی کچے اور نئے پن کی علامت تھی. اور لیکن بعض شراح نے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یعنی کہ ویسے تو ہے، لیکن کیا اس موقع پر وہ ایسا ہمارے لیے ایسا کر دیں گے؟ قادر مطلق تو ہیں، لیکن کیا ہمارے لیے بھی ایسا کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اور بلکہ ایک قرآت میں ایک مفسر لکھتے ہیں، ایک قرآت میں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ حل استطیع ربو کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے، تو یہ مطلب بالکل صحیح ہو جائے گا. لیکن صحیح ترجمہ یہی بن رہا ہے لغت کے اعتبار سے، صرفی نحوی اعتبار سے، کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل، کہ ہم پر وہ نازل کرے، علینا مائدہ، ایک دسترخوان، من السما، آسمان سے. قالت تقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو. ایسی باتیں کرتے ہو تم، ایک ایمان والے ہو کر پھر تم معجزہ طلب کرتے ہو اور ایسی آزمائش کرتے ہو. ایمان والوں کو چاہیے وہ ایمان لائیں، دعا کریں، جو ضرورت ہے دعا کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے یعنی وہ کوئی چیز سے کنڈیشنل ہو جائے کہ ایسا ہو تو پھر ہمارا ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں، یا ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. تو پھر آگے لیکن جب انہوں نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو ایمان والوں کو یہ روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائش کریں جبکہ وہ ایمان لا چکے ہیں. قالوا، تو کہنے لگے نورید ان ناکل منہا، وہ کہنے لگے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسی سے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم مطمئن ہو جائیں ہمارے قلوب، इसकी वजह से हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि यानी कि हम जिस नबी पर ईमान लाए हैं और वो खुदा बिल्कुल बरहक है, जैसा हमने कहा वैसा हो गया, जैसे लियतमईन्ना कल्बी वलाकिन लियतमईन्ना कल्बी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम ईमान नहीं लाते, कहा क्यों नहीं, ईमान तो मैं लाता हूँ लेकिन मैं इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करें। तो तकरीबन यही सूरत हाल इन्होंने पेश की कि हमें भी तत्मईन्ना कुलूबुना, कि हमारे दिल इससे मुतमईन हो जाएंगे, वह नालमु और हम जान लेंगे अन कद सदाकताना, कि आपने हमसे सच कहा, आप सच्चे नबी हैं और आपका वादा सच्चा है, वह नकूना अलैहा मिन शाहिदीन, और इसके बाद भी हम हो जाएंगे गवाह, यानी हमारे बाद जो लोग आएंगे हम उसको भी गवाही देंगे कि हमने तो ऐसा ऐसा मौजदा देखा है, तो ये नबी बरहक हैं। तो बात उनकी एक लिहाज से ठीक थी, यानी कि अब उन्होंने जो शरा की इससे बात खुल गई कि वो उनकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी, बल्कि नीयत एक सिर्फ फरमाइश करने की थी, अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ था नया होने की वजह से, नए होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से। ये फिर हमारे इसीलिए औलिया अल्लाह ये बात करते कि किसी पर, किसी की वलायत पर एतमाद और उसके करामत से मत करो, बल्कि जब एतमाद कर लिया तो अब उसके ऊपर अंधा एतमाद करो, करामत का इंतजार मत करो। करामत बाद दफा नजरबंदी भी होती है, लिहाजा बहुत से लोग ऐसे नजरबंदी करते हैं, दूसरा आदमी उसको देख के मुतासिर हो जाता है, ऐसे काम ऐसे लोगों ने बताया, ऐसे काम कि जो नजर आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा ऐसा हो गया, तो इसको नजरबंदी कहते हैं। लेकिन अगर वो शख्स सुन्नत व शरीयत के खिलाफ है तो फिर वो नजरबंदी है, और अगर अल्लाह वाला है तो फिर करामत है। अब इसकी तख्सीस आम आदमी नहीं कर सकता, ये तख्सीस अहल इल्म और खास अहल इल्म कर सकते हैं, जिनको ये फहम हासिल हो जाए कि ये नजरबंदी है या करामत है। और अगर करामत है तो करामत कोई खास वलायत में से नहीं है कि जिस करामत नहीं होगी तो वलीउल्लाह नहीं होगा। करामातुल औलियाए हक़ुन, ये अपनी जगह है कि औलिया अल्लाह की करामत हक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वलीउल्लाह में करामत हो। सबसे बड़ी करामत क्या है, सबसे बड़ी इन अकरमकुल करम का जो है वो अक्सल मादा क्या, करामा क्या, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे हमारे नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम मुहतरम मुअज्जिज़ वो है जो जितना तकवा से रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा करामत वाला वो है जो जितना तकवा से रहता है, जितनी ज्यादा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है एहतियात और हज़्म के दर्जे में, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी वजह से मुझसे अल्लाह नाराज ना हो जाए, वो राजी हैं मुझसे खफा तो नहीं है, ये खदशा मेरे दिल से कब दूर होगा। यानी जो आशिक होता है उसको ये खदशा रहता है कहीं किसी मेरी बात से अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए। तो इसलिए उस आदमी को चाहिए कि बजाय ऐसी फरमाइश करने के अल्लाह से फरियाद करे और दुआ मांगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी शरह कर दी तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल ईसा इब्न मरियम, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं वहां भी, यहाँ भी ईसा इब्न मरियम, हाली ईसा भी कह सकते थे, ईसा कौन थे जो हजरत मरियम के बेटे थे, अल्लाह के बेटे नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर फरमाते हैं ईसा इब्न मरियम कहने का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं थे, हजरत मरियम के बेटे थे, लेकिन ईसाइयों ने फिर भी खींच तान के उसको क्या बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी बना दिया, नाउज़ बिल्ला। तो और ये बात तो जाहिर सी बात है ये कर रहा है, कादियानी भी ऐसी कहता है, कादियानी भी इसी तरह की बात करता है, और लोग कादियानी को बहुत से सादा लोग मुसलमान उसको मुसलमान समझते हैं, जबकि वो भी ऐसी बात करता है, और भी बहुत सी ऐसी बेहुदा बातें हैं कि अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह ताला के साथ मैंने सोहबत की और फिर उसके नतीजे में मेरे मुझसे ये औलाद पैदा हुई, नाउज़ बिल्ला, इस तरह की बात कादियानी करता है ऐसे मौके पर। तो ये उसके कुफर में तो कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पे मकसद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और रूहुल्लाह इसीलिए कि अल्लाह की निशानी है, कलीमतुल्लाह अल्लाह की निशानी। जब नजाशी के सामने हजरत जाफर ने ये बात कही थी रज़ी अल्लाह अन्हु कि हम तो ऐसे कौम थे हबशा से जब हजरत करके गए तो ऐसे ये जालिम थे अहले अरब, इतने जालिम थे कि उनको अब चले गए जा रहे हैं, जाते ही पीछे आदमी दौड़ाया कि देखो ये जाने ना पाए, पहले यानी वहां जा रहे हैं जुल्म व सितम कर रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अल्लाह की जमीन वसी है तुम कहीं भी चले जाओ, आप तो खुद तो बर्दाश्त करते थे, लेकिन जैसे कहते हैं आदमी खुद फाका कर लेता है, अपने बच्चों का रोना और फाका नहीं देखा जाता। आप सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते थे, लेकिन आपसे उम्मत की तकलीफ नहीं देखी जाती थी कि सहाबा को इस तरह तंग किया जा रहा है, ये कमजोर हैं और इनको तंग किया जा रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला कह पड़े कि यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब कुफर में थे तो हमारी इज्जत थी, हमारी बात थी, अब ये लोग हमें इतना जलील करते हैं और हमें इस तरह ये लोग तंग करते हैं। आपने फरमाया सब्र करो, अभी इंतकाम की और बदला लेने की इजाजत नहीं, मना था, वरना ले सकते थे। सहाबा बुजदिल नहीं थे, जो 313 950 पे गालिब आ गए, वो वहां पे भी एक नबी में 40 जन्नतियों की ताकत होती है। आप चाहते हो तो उठा के अबू जहल को यूं फेंक देते, अल्लाह ताला का कुफ्फू आई दी, आपने हाथों को रोक के रखो, वरना आपने रुकाना पहलवान ने खुद चैलेंज किया कि आप मुझे हरा दें, मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। रुकाना को आपने यूं उठा के फेंक दिया, वो हैरत ज़दा रह गया, यानी उसको यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसने कहा अच्छा दोबारा करें, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर जब आपने उसको चित कर दिया और हरा दिया, फिर वो रजी अल्लाह अन हो गया और उसने ईमान कबूल कर, सच्चा आदमी था। वरना ऐसे कितनों ने कहा, अबू जहल ने भी कहा इसमें क्या है तुम बता दो, वहां पे क्या कह रहा, ये तो जादू है, नाउज बिल्ला, ऐसा मानने वालों ने माना भी। तो आपके अंदर ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मना था। अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते थे कि देखो कुफर कितना बुजदिल और कितना जालिम होता है, और हमारे प्यारे कितने सब्र वाले होते हैं, हमारे प्यारे कितने सब्र वाले होते हैं, और हम अपने प्यारों को किस सब्र के रास्ते से गुजारते हैं। सब्र गुजदीदन दो सब मुसिद्दीकी शुदन, जो सब्र के रास्ते से गुजरता है वो सिद्दीक बन जाता है। आज भी जो सब्र करेगा, लोग परेशान होते हैं, हम अगर शरई पर्दा कर लेंगे लोग बायकाट कर देंगे, कोई बायकाट नहीं करेगा, इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में लोग आपकी नकल करने लगेंगे, वाकई तुम्हारा घराना सही है। वरना जब हो जाता है हादसा, खूब मस्ती मजाक हुई देवर भाभी में और खूब साथ लूडो खेल रहे हैं, अभी हमारे दोस्त बता रहे थे 3 महीने का किस्सा है, 3 महीने पहले का, भाभी के साथ खूब मजाक हो रहा है और भाभी भी साथ खेल रही हैं और सारे मामलात हो रहे हैं जो एक नामहरम में होता है। जब नामहरम हमारे सामने होते हैं, तीसरा शैतान होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया क्या उधर देखते हो, जहां दो मर्द औरत होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। लिहाजा यही हुआ कि शैतान जब गालिब आया, उसने कुछ गलत हरकत की, उसने एक थप्पड़ लगाया, कहा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, भाभी हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने भाई के अमानत में खयानत करते हो। उसने कहा फिर तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे, मैं तो यही समझा। ये बात, औरतें अक्सर अंदर से पाक होती हैं, लेकिन वो माहौल मुआशरे की वजह से बेबाक हो जाती हैं, अंदर से उनका बातिन पाक होता है, लेकिन पाक होने के मर्द का तो हाल वही था। लिहाजा फिर उसकी बदनामी भी हुई, रुसवाई हुई, और उसकी बीवी भी, जो जिसने ये किया दूसरे की बीवी का, उसकी बीवी भी अगेंस्ट हो गई, कहती अब मैं कभी भी इस पे एतबार नहीं कर सकती, जो अपनी भाभी पे ऐसा हरकत कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेपर्दगी की वजह से हुआ। अब वो कहते हैं जो लोग, ये हमारे दोस्त कह रहे थे, जो लोग कहते थे ना तुम लोग बहुत सख्ती करते हो, ऐसे पर्दा वैसे पर्दा, यहां ना बैठो वहां ना बैठो, अब कहते हैं तुम लोग सही करते हो क्योंकि ये हमने देख लिया अपनी आंखों। तो ये बादी चीजें सामने आ जाती हैं, हर चीज सामने नहीं आती, जो सामने आ जाती है पता चल जाता है, कोई अखबार में आया हो ऐसा हो गया। आमतौर पर चीजें छुप जाती हैं, लोग छुपाते भी इसलिए हैं ताकि उनकी इज्जत ना उछले और ऐसी बात ना हो, वरना ये चीजें बेपर्दगी का नुकसान यकीनन हो के रहेगा। एक और हमारे दोस्त हैं, उनके पता चला कि वो भी, उनके शौहर जो है, औरत का शौहर, लड़की का शौहर बाहर मुल्क में और वो रह रही है अपने ससुराल में। भाई जब शौहर बाहर मुल्क में और भाई हैं तो ससुराल में रहने का तुम्हारा क्या ताल्लुक है, महके में छोड़ के जाओ ताकि वो महफूज रहे। अब वो देवर के साथ जाना आना हो, मार्केट भी जाना आना हो रहा है देवर के साथ, वही बात है, ब्रॉड माइंडेड। फिर ऐसे लोग क्या कहते हैं कि हम आजाद ख्याल हैं, आवारा नहीं है। अब आजाद ख्याल और आवारा में भी फर्क है। आवारा बदचलन, यानी मुंह काला करने वाले, और आजाद ख्याल हर वक्त होना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर उस आजाद ख्याली का अगला स्टेज क्या है, वही जिसे कहते हैं उरियानी, फहाशी और बदकारी है, और क्या है। फिर यही हुआ कि आते जाते जरा ताल्लुक बढ़ाया, उसने कोई तोहफा भी दिया और लेन देन भी हुई तोहफे की, फिर उसने बावर्ची खाने में आके नामुनासिब हाथ लगाया। इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग अपनी आंखें खोलें, हम कहते कुछ नहीं होता, ये किस्से सुनाने का मतलब ही हम इबरत हासिल करें। उसने जब फिर ऐसा किया, उसने भी उसको थप्पड़ मारा और कहा तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, फिर वो शोर मचाने लगा, हाँ असल में ये घर जाना चाहती है ना, इसलिए ये ऐसा कर रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। उसने कुरान उठाओ, उसने नाजायज और झूठा कुरान भी उठा लिया, एक गुनाह पर दूसरा गुनाह, यानी मैंने नहीं किया, और वो लड़की जो पाकीदा कह रही नहीं किया है, मैं कुरान उठा रही हूं कि इसने किया है, अब दोनों ने कुरान उठाया। फिर बाद में जब उसकी शादी हो गई, फिर उसने कहा कि वाकई मुझसे गलती हुई थी, तो गलती हुई थी तस्लीम कर लेते, तुम दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हो। वजह क्या है कि बात वही बेपर्दगी की है, जब ऐसा मामला हो गया अब पर्दा करने लगे। पहले जब कहा जाता है तो पर्दा नहीं होता, पहले नहीं होता, यहीं पर एक आदमी आते थे हमारे डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके घर के बयान में वो आदमी आते थे, बस यानी शरीयत इतनी ज्यादा चेहरे से भी जाहिर नहीं होती थी, घर में उनके भतीजे का आना जाना, सगा भतीजा यानी शौहर का भतीजा, और बीवी का कौन हुआ, बीवी के लिए नामहरम वो चाची है ना, चाची और ममानी से पर्दा है, लिहाजा वो आते जाते रहे 14 साल 15 साल। हमारे ये तो बच्चा है, 14 साल का बच्चा होता है, 14 साल में अक्सर कराची के बच्चे बालिग हो जाते, 15 साल में शरीयत उसको कहती है, 15 साल कमरी एतबार से, चांद के एतबार से वो बालिग हो जाता है, लिहाजा उस पर हुक्म बालिग का लगता है। जब वो बालिग हो जाए 14.5 साल में अंग्रेजी एतबार से, शमसी एतबार से 15 साल पूरे हो जाते, अब उसको कहना अभी भी कह रहे हैं बच्चा है, बच्चा कहाँ रहा, ये तो बड़ा है, 10 साल से पर्दा होना चाहिए, 14 साल 15 साल जा रहा है, चाची से पेंगे बढ़ रही हैं और जो है बातें हो रही हैं, भाई चलो अभी तो कुछ इतनी ज्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब 19-20 साल का हो गया तो चाची के साथ सेटिंग करके, वो चाची जिसके 5 बच्चे खेलने कूदने के काबिल, 5 बच्चे में ज्यादा कम से कम 10 साल के तो बच्चा होगा एक, और 5 बच्चों वाली चाची 20 साल के जो है नामहरम के साथ घर छोड़ के चली गई, उन्होंने खुद आके मुझे बताया, तीसरा कोई रावी नहीं है। फिर खुद कहने लगे मेरी बीवी ऐसे नहीं थी, वो तो घरेलू औरत थी, वो मनचली नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा ऐसा यूं हुआ कि आपने पर्दे की दीवार को ढा दिया, जब शरीयत का हुक्म तोड़ा जाएगा तो फिर वहां पे फितना पैदा होगा। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, ये मौलवी लोग बहुत हसास होते हैं, हसास ही होना चाहिए, ईमानदार को हसास होना चाहिए। मैं इस मौके पे कहता हूं, हम जाते हैं ताला लगाते हैं, ये सामने वाले जाते हैं ताला लगाते हैं, अभी हमारे पड़ोसी हैं कहे आप शक करते हैं, आप ताला लगाते हैं, हम लोग तो हैं सामने, आप क्यों ताला शक नहीं करते, एहतियात करते हैं। शक और एहतियात में फर्क, हम किसी पड़ोसी पे शक नहीं, हर फ्लैट वाला भी जाता है ताला लगाता है, घर वाला भी जाता है, तो कुछ पड़ोसी गए आपको बहुत शक है, हम कोई नहीं, कोई और आ जाएगा डाकू चोर। तो इसीलिए शरीयत ने एहतियात का हुक्म दिया है, शक करना जायज नहीं है, एहतियात करना वाजिब है। शक करना जायज नहीं कि मेरा भाई ऐसा है वैसा है, नहीं एहतियात, इसमें कोई हो सकता है कभी आमना सामना होना और है, और साथ खाना पीना और हंसी मजाक करने से ये फितने बरपा होते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ ऐसी ही बातें नहीं, बल्कि जब ये चीजें तजर्बात में आती हैं फिर आदमी बाद में परेशान होता है, और बाद में परेशान होने का फायदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे एक आध दो चार किस्से नहीं है, तो अब आदमी बयान करता रहे तो पूरा बयान इसी पे गुजर जाए, लेकिन इसलिए सुना देते हैं कि ऐसी चीजें हमारे मुआशरे में है, हम जिसको हल्का समझते हैं ना, ये इतना हल्की बात नहीं है, जब बात इंतहा को पहुंचती है तब सामने आती, वरना हल्के फुल्के तो हर कोई एक दूसरे से मजाक कर रहा है, कहते हैं भाभी से तो मजाक का ही रिश्ता होता है। हमारे फिरोज मेहमान साहब कहते भाभी से, कहते भाभी आप बहुत दुबली हुई जा रही, अम्मा से नहीं कहते, खाला से नहीं कहते, जहां नामहरम का रिश्ता वहां कहते हैं भाभी आप दुबली हो रहे, अम्मा की सेहत का ख्याल करो, बहन की सेहत का ख्याल करो, भाभी को इससे ही तुम्हें यह कि भाभी दुबली हो रही है और भाभी के साथ खाना जरूरी है। हमारे शेख मुर्शिद रहमतुल्लाह ने तो बयान के दौरान फरमाया जमात से नमाज पढ़ना है सुन्नत मुअक्कदा वाजिब के दर्जे में, और लेकिन सुन्नत जमात से खाना खाना कहाँ जरूरी है, अगर जरूरी है तो मर्द सारे भाई एक तरफ खा लें, 6-7 भाई बाज खानदानों में, फिरोज भाई के 8 भाई हैं, ये लोग भाई अलग खाते हैं और सबकी बीवियां अलग खाती हैं, या तो सब अपने अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ खाएं, नहीं हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसको पसंद नहीं किया जाता, वो अलग बैठना भाई, मर्द अलग बैठे, सारे भाई मिलके बैठे और सारी औरतें मिलके बैठे, जब इन सब चीजों में रखना होता है तो फिर जब दीवार टूटती है तो फिर की मुलम्मत फरमाते हैं, लोग कहते हैं पर्दे में जर्दा पकता है, फरमाए पर्दे में जर्दा नहीं पक सकता, जब तक पर्दा नहीं हटेगा जर्दा नहीं नहीं पकेगा, यानी कोई बेउसूली की बात नहीं हो सकती। समझना चाहिए, नहीं समझ में आता अपने बड़ों से पूछना चाहिए। अकलमंद वो है जो दूसरे के हालात से इबरत हासिल करे, खुद गुजरने के बाद फिर क्या फायदा हो, दूसरे के हालात से इबरत हासिल करे। जैसे मैंने सुनाया, हमारे वाला सुनाते थे कि किसी को पकड़ लिया काजी ने रंगे हाथों फजर से पहले, वो शराब की बोतल, ना महरम औरत मौजूद, अय्याश आदमी था उस काजी, उस जमाने में काजी का था, आज तो कोई कुछ कर नहीं सकता। उसने पकड़ लिया, कहा मैं रंगे हाथों पकड़ा है, अब तुम्हें सजा दूंगा। उसने जो है, हजरत फरमाते तो उसने दोनों हाथों से आंख मला और पूछा कि आज सूरज किधर से निकला है, आज सूरज किधर से निकला है। तो उसने कहा किधर से निकला है, मशरिक से निकला। कहा मैंने सुना है कि जब तक सूरज मशरिक से निकलेगा अल्लाह ताला तौबा कबूल करते रहेंगे, मैं आपके सामने तौबा करता हूं कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, काजी साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है गुनाह नहीं करूंगा आपने कहा है, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें सजा देके दूसरों को इबरत दूंगा, तुम आइंदा तौबा कर रहे हो ना, आज तुमने किया मैंने पकड़ लिया। तो उसने क्या कहा, बड़ा चंट और चालाक था, कि काजी साहब इसी रात में औरों ने भी गुनाह किया होगा, आप दूसरों को सजा देके मुझे इबरत दे दीजिए, बजाय इसके कि मुझे इबरत, मुझे सजा देके दूसरों को इबरत दें, आप किसी और को सजा दे दीजिए, मैं इबरत हासिल करने के लिए तैयार हूं। तो ये अकलमंद वो है जो दूसरों के, जैसे हम शाम के हालात से सबक हासिल करें, फलस्तीन के हालात से सबक हासिल करें, हम गुलामी में डूबते चले जा रहे हैं, कर्जों में डूबते चले, सबक हासिल नहीं करते हम, नहीं नहीं हमारे साथ बहुत मुखलिस है, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसको दोस्त कहते हैं, दोस्त इसको कहते हैं, गुलामाना भी नहीं कहा जाएगा, महकूमाना गुलामाना ताल्लुक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा, कल मैंने खज़ाइन कुरान से सुनाया, हज़रत वाला की शरम, उनके साथ दोस्ती मत करो, दिल का ताल्लुक मत रखो। कारोबार फिर भी जायज है, आज लोग कारोबार का बायकॉट कर रहे हैं, उनके तरीकों का बायकॉट नहीं कर रहे। उनके तरीकों का बायकॉट ये है, तुम दाढ़ी मुंडाते हो हम दाढ़ी रखेंगे, तुम आका की बेहुर्मती करते हो, गुस्ताखी करते हो कुरान की, हम कुरान को सीने से लगाएंगे, पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे। अगर सारे मुसलमान इस तरह जाग जाए, और हकीकी बायकॉट इसी को कहते हैं, तो सारा मामला हल हो जाएगा। ये तो इसीलिए हमें, हम पे जो है, हमें इसलिए तंग करते हैं कि बताए ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, इनको ये जगाते रहते हैं, ऐसी डोज देके जगाते रहते हैं कि इनको पता चले कि अभी कितनी कितनी हरारत बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, चंद लोगों ने जब हिम्मत की, आज सारी उम्मत इसके लिए जाग गई है। अभी खबर आई है फलाने इलाके में वो उनको बिल्कुल बंद है, कोई यहूदी प्रोडक्ट, कोई गैरों की प्रोडक्ट नहीं जा सकती, और सिर्फ मुसलमानों की चलेगी। वो कला के बाहर ने इसको मंजूर किया, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा, उनके तरीकों का भी बायकॉट करना पड़ेगा। हम नबी अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार करेंगे, सर को ढकेंगे, दाढ़ी को बढ़ाएंगे, पैंचे को ऊपर रखेंगे, घरों से तस्वीरों को और टीवी और गंदी चीजों को निकालेंगे। आज हर जगह तस्वीर बायकॉट तो है, अभी एक तफरी मकाम पे जाना, पांडा हर जगह रखा, पांडा वो बुद्ध की तरह बनाया हुआ, कितना बड़ा गुनाह है, छोटा है? ये जितने इख्तलाफात हैं तस्वीर के बारे में, ये सब डिजिटल के अंदर है, मोबाइल के अंदर। पोस्टर लगाना भी नाजायज, सब मुत्तफिक हैं इस पर, और बुत बनाने पर चारों आइम्मा इस पर मुत्तफिक हैं, इमाम मालिक समेत, कि जिसका साया हो ये हराम है, ये काम बासर बरसरे बाजार हो रहा है। गुब्बारा बेचने वाला भी बुत बना के बेच रहा है, गुब्बारा बेचने वाला उस पर चेहरा बना रहा है। बच्चे की गाड़ी लेने जाएं आप, या बच्चे को झूला झुलाने जाएं, उस पर भी चेहरा बना हुआ है। ऐसी जगह ना लेके जाएं, उसको बहलाएं, उसको किसी ऐसी गाड़ी में बैठाएं जिसमें तस्वीरें नहीं बनी हुई हैं, वरना गाय झूला ऊपर सामने कोई मुंह बना हुआ बंदर का, हाथी का, ये सब ये क्या है? मुसलमान पहले मुसलमान को ये देखना चाहिए कि हमारी शरीयत इजाजत देती है या नहीं, इसकी जरूरत है, ये अच्छा लगता है, इससे अट्रैक्शन होती है, ये मुसलमान देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा गुनाह है, जिसके रहते हुए अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो सकती। इस तस्वीर और बुत के रहते हुए, ये बुत हैं, चलते फिरते बुत, हम ये तो चलो हम कहेंगे इसके हटाने पे हमारा इख्तियार नहीं है, हम घर में लाके वही दे देते हैं बच्चों को, वो गुड़िया जिसके गुड़िया गुड्डा जिसके चेहरा बनाओ वो भी इसी में है, वो हाथी घोड़ा भालू बच्चों को देते हैं, ट्रेन ला के दें, गाड़ी ला के दें जिसमें तस्वीर ना हो, ऐसे खिलौने ला के दें, कपड़ा वो खरीदें, मुझे मालूम है मैं भी गया हूँ कपड़े खरीदने, नहीं भाई ये तस्वीर वाला, भाई हमें बगैर तस्वीर वाला दिखाओ। ऐसे मुल्ला और मौलवी जिंदा हैं जो बगैर तस्वीर वाला पहनते हैं, फिर वो कहेगा ऐसे लोग भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, विलफत नहीं मिले हम उसको सिलवाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को हम शैतान की गोद में नहीं देंगे। वरना बच्चा जब वो इस तरह का पहन रहा है कपड़ा, फिर कहते हैं नजर लग जाती है, रोता बहुत है, तंग बहुत करता है, बीमार बहुत रहता है, तो जहां पे अल्लाह के फरिश्ते नहीं आएंगे शैतान आएगा, वहां कौन सी रहमत बरसेगी। ये तो हम खुद उसको हवाले कर रहे हैं। लिहाजा ये सब चीजें देखना चाहिए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ को है। तो हमें इन हालात से इबरत हासिल करनी चाहिए, मुसलमानों को बेदार होना चाहिए। हालात को देख के मुसलमानों में आ रहा है, अब देखो बाजों को सुना है कि वो टीटी लेके फिर रहे हैं, कराची के हालात की वजह से लाइसेंस वाला टीटी लेके उन्होंने सामने रखा, बताने वाले ने बताया सामने रखा एटीएम के सामने, और रखा और लोड भी किया, किसी को आना है तो आ जाए। हालात का तकाजा है कि, तो इसी तरह जब आलमी हालात का तकाजा क्या है कि मुसलमान तैयार रहे और मुसलमान पक्का मुसलमान बने, ताकि कल को ये कुफार जो है हमें इस तरह ना मिटा सकें, जैसे 6.5 लाख लोग शाम में कत्ल हो चुके हैं मुसलमानों में, और सारे मुसलमान हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता। अभी कोई एक जगह कोई जुल्म हो जाए, किसी मदरसे में कोई पिटाई हो जाए तो फौरन मीडिया उसको चीखने लगता है। जहां 6.5 लाख कत्ल हो चुके हैं वो कुछ बोलने वाला नहीं है, जहां 35,000 से 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं वहां कोई बोल, उसमें भी वही लोग हैं। ये शेब अबी तालिब को आप पढ़ें, ये काफिर उस जमाने का जालिम है, लिखा है उसमें 3 साल कैद में रहे, बनू हाशिम की वो जमीन थी, नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाजा अबू तालिब ने कह दिया कि तो आप यहां से निकल जाए वरना ये लोग आपकी जान के दर पे हैं, आप उसमें जाके मैसूर हो गए, ऐसा खाना पीना वहां नहीं मिलता था, आप क्या कर रहे थे। वही बात है कि आप दीन की दावत दे रहे थे, एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वहां जाके इतने लाले पड़े, आदमी जब जाता है कहीं तो राशन लेके ही जाता है, खाना पीना राशन लेके गए, कब तक चलता, 3 साल चलेगा, 2-4 हफ्तों में खत्म हो गया, भूख आने लगी, पत्ते चबा रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं वो भी उसमें थे, वो कुरैशी नहीं थे लेकिन वो भी उसमें थे, कहते हैं मैं एक जगह भूख की हालत में था, मुझे पेशाब का तकाजा था, मैंने पेशाब किया तो आवाज से पता चला कि यहाँ पे कोई चमड़ा वगैरह है, तो उसको मैंने निकाला, फिर उसको धोया, फिर उसको जलाया, फिर उसको मैंने उस पानी को पी लिया, 3 दिन मैंने ऐसा गुजारा। ये एक सहाबी का हाल है, शैब अबी तालिब में आप अलैहिस्सलाम ने 3 साल गुजारे, उसी में कमजोर होकर आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और उसी में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का भी सन 8 हिजरी में फिर इंतकाल हो गया। लिहाजा ये इतना जुल्म, और ये भी लिखा है कि बच्चों की आवाज कुरैश तक पहुंचती थी रोने की, लेकिन वो खाने की चीज जाने नहीं देते थे। आज फलस्तीन को देखिए और कल के शैब अबी तालिब को देखिए, दोनों एक ही जैसा ही, खाना नहीं जाने दे रहे, बड़ी मुश्किल से जाता है, और वहां पे भी यही हो रहा, बच्चों के रोने की आवाज जो खुद उनके इलाके के हैं और बच्चे हैं, बच्चों पे तो एक इंतहाई जालिम भी तरस खाता है, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज उनके तक आ रही थी और वो गजा जाने नहीं दे रहे थे। आज भी ऐसे ही जुल्म का सामना मुसलमानों को है, किस वजह से है कि बात वही है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। इसको पूरा कर लो वरना ये रह जाता है। तो फरमाया ईसा अलैहि सलाम ने कि क़ाला ईसा इब्ने मरियम अल्लाहुम्मा रब्बा, अब उन्होंने दुआ की, जब उन्होंने कहा दुआ की दरख्वास्त की, ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माईदा, या अल्लाह हम पर एक दस्तरखान नाजिल फरमाइए खानों से भरा, मिनस समा तकूनू, ताकि हम बना ले नना हमारे लिए हो जाए ईद, ईद अव्वलीना व आखिरना, हमारे इस वक्त के लोगों के लिए भी बाद के लोगों के लिए भी ईद का समा हो जाए, खुशी मनाएं हम, व आयतम मिन, और वो आपकी तरफ से निशानी हो जाए लोगों के लिए कि अल्लाह ऐसा सच्चा है कि हमने फरमाइश की, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने आसमान से खाना नाजिल फरमा दिया, और उसके बाद कहते हैं वरज़ुक़ना, और हमें रिज़्क़ दीजिए, वरज़ुक़ना हमें रिज़्क़ दीजिए, अंता खैरुर राज़िक़ीन, क्योंकि आप बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं, आप बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़ौलल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, अल्लाह ताला फरमा रहे मैं नाजिल कर रहा हूँ, मैं नाजिल करता हूँ, करूंगा, अलैकुम तुम पर, फमई तुम पर ये चीज नाजिल करूंगा जो तुमने मांगी है, लेकिन ये भी समझ लेना फमई यकफुर बाद मिनकुम, जो इसके बाद भी फिर कुफर करेगा, नाशुकरी करेगा, हुक्म उदुली करेगा, तो ये समझ लेना बाद मिन फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा जो इससे पहले किसी को नहीं दिया होगा, ये भी याद रखना। جب کوئی فرمائش کرتا ہے اور اس کی فرمائش پوری کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے بعد جو معجزہ مانگ لیا امت نے, صالح علیہ السلام کی امت نے مانگ لیا, آپ اس میں سے اونٹنی ظاہر کر دیجئے, پہاڑ ہے سامنے پہاڑ ہے, اس میں سے آپ کا معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی اللہ کے مقرب ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ قادر مطلق ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں یہ پہاڑ ہے سامنے اس سے اونٹنی نکل کے آئے اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن ہو, آنے کے بعد ہی فوراً بچہ جنے. صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ میری قوم مانگ رہی ہے آپ یہ ظاہر کر دیجئے. تھوڑی دیر میں پہاڑ میں لرزش ہوئی اور ایک اونٹنی اتنے بڑے قد کی نکلی جو سارے گاؤں کا پانی بھی ہے, ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی تھی بھائی, وہ اللہ کی نشانی تھی وہ, اور اس نے پھر بچہ جنا. پھر اس کے بعد وہی ہوا جو عام طور پہ مشہور فاقروہا, اس نے انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے اور اس کے اونٹنی کے پیر, کیونکہ وہ ہوا یہ کہ ایک دن میں وہ سارے اتنا پانی پیتی تھی, سارے گاؤں والوں کا پانی پی جاتی, ناقۃ اللہ بہت بڑی تھی اونٹنی, سارے گاؤں والے کا پانی پی جاتی تھی, لیکن دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ دوسرے دن سب کو دودھ ہو جاتا تھا, سب کے لیے گاؤں جتنا تھا سب کے لیے دودھ کافی ہو, اتنا دودھ دیتی تھی. لیکن کچھ اوباش لوگوں نے جو نہیں مانے انہوں نے کیا کیا, اور ان کو بھی تیار کیا, اور لوگوں نے جو تیار کرتے ہیں ذرا تم کرو تمہاری شادی ہم ان خوبصورت عورتوں سے کرا دیں گے, دو آدمیوں کو تیار کیا. وقد خواب امن دساہا کذبت سمود بطغواہا اذن باعث اشقاہا, جب کھڑا ہوا ان میں سے ایک شقی اور بدبخت, اشقا بہت زیادہ بند, اذن باعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا, اللہ کے رسول نے کہا, صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی روٹنی ہے, اس کو پانی پلاؤ, اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا فكذبوه فعاقروها, انہوں نے جھٹلایا, یہ ایسی پہلے معجزہ مانگا پھر جھٹلا رہا, فكذبوه انہوں نے جھٹلا, فعاقروها اس کے پیر کاٹ دیے, پیر کاٹے وہ گر گئی, پھر مار مار کے اس کو تیر ویر مار کے مار دیا, آسان نہیں تھا مارنا, انہوں نے بہت پلاننگ سے کام کیا, لہذا جب وہ مر گیا, اب صالح علیہ السلام نے کہا اب تم پر عذاب نازل ہوگا یاد رکھنا, اب وہ صالح علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں, کہاں گئے, بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے اب ان کو تلاش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمایا فعاقروها فدمدم علیہم پھر ہمارا دمدمہ عذاب نازل ہو, فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, پھر ان کا اللہ کا عذاب نازل ہوا, رب بذنبہم اے بلا وجہ نہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, فاقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا, وہ کوئی جتنے چودھری تھے جو جن سے شادی کرائی جا رہی تھی جن کی شادی سب مرے پڑے تھے, سب مرے پڑے تھے, کہاں گئے اللہ کی نافرمانی کرنے والے, علی عروشہا ان کا آپ دے ویقولا, دیکھیں کیا ایسا تھا کہ وہ ان کے گھر گرے ہوئے تھے, چھت اوپر گری ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ جب تباہی بربادی لاتے ہیں تو اس طرح کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا, اور دیکھو اگر دنیا والے کہیں دوسری جگہ کوئی خلاف عوام کے خلاف کام کرتے ہیں کوئی, تو تیسری جگہ فوج تیار رکھتے ہیں ٹینشن نہ ہو جائے لوگ احتجاج نہ کریں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, فلا یخاف عقباہا ہمیں انجام کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ہمارا کیا وال بھی کا کرے, کوئی ہمارا کیا نقصان پہنچائے گا, لہذا یہی ہوا انہوں نے فرمائش کی اور پھر معاہدہ نازل ہوا. حضرت ابو ذر غفاری سے راوی ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ معاہدہ نازل ہوا اور پھر کہا گیا دیکھو اس کو کھا کے ختم کر دینا, اس کو بچا کے مت رکھنا, اس کو غریبوں کو دینا, کچھ اس میں کنڈیشن تھی اس طرح کھانا, انہوں نے اس کی بے وصولی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو فلما عطوا عما نهوا جب وہ ہمارے کہنے کو انہوں نہیں مانا, فقلنا کونوا ہم نے ان کو کہا, قلنا کونوا قردۃ خاسئین ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل, وہ بعض ان میں سے 300 سے زیادہ افراد بندر بنا دیے گئے, عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام لے لے کے بلاتے تھے اور وہ روتے تھے اسی شکل میں، بندر بننے کے بعد اسی شکل میں وہ روتے تھے. کیا بات ہے، انہوں نے ایک چیز مانگی اور پھر اس کی قدر نہیں کی، ناقدری کی نعمت کی. اب یہاں بیان کرنا یہ مقصد ہے، ایک بڑے عالم نے اس کو بیان کیا، ہم نے پاکستان پاکستان بنے گا اور بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے والد صاحب بھی تحریک میں شامل تھے، ہمارے اکابر بھی تحریک میں شامل تھے، ایک جوش تھا، ولولہ تھا، الگ ملک بنائیں گے اور اسلامی نظام نافذ کریں گے اور سودی نظام نہیں ہوگا. یہ سب کیا ہوا؟ پھر ہم نے ناشکری کی، اسی کی آج وبا ہے کہ ہر جگہ آدمی پریشان. لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا، ہم نے مانگا، ہمارے اکابر نے قربانی دی اور ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے بھی کر دیا. پھر کیا ہوا؟ کس کے کیا ہوا؟ آج کہاں چلے گئے؟ آج یہاں پہ سودی نظام ہے، کوئی دینی جو ایسی چیز نہیں ہے، وہی ہر جگہ تصویریں ہیں، ہر الٹا کام جو ہے، ہر الٹا کام روا ہے اور سیدھا کام مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ناشکری کی. اب ہر آدمی پریشان ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایک تو سب بنے ہوئے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ سے رجوع نہیں کریں گے. یہ بھی ہماری طرف سے غلطی ہے، ہم فوراً بلیم دیتے ہیں حکمرانوں کو. ہاں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایسا یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو کون لایا ہے؟ ان کو بھی ہم لائے ہیں. جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تم پر تمہارے برگزیدہ لوگ امام کعبہ دعا کریں گے، ادھر شیخ سدیس دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ والے دعا کر رہے ہیں، تمہارے برگزیدہ لوگ دعا کریں گے، تمہاری دعا قبول نہیں. آج ہم کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تم پر ایسے اشرار کو مسلط کر دیا جائے گا، شریر لوگ تم پر حکمرانی کریں گے، پھر تمہارے حق غصب کریں گے، ہر مہینے بجلی کا بل بڑھے گا. اور یہ پریشانی ہماری اپنی خریدی ہوئی ہے. اگر جس طرح عید کی نماز میں وہاں تک لوگ آتے ہیں، سب فجر کی نماز میں آ جائیں اور سب اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے. بدلہ ہے تو صرف انسان بدلہ ہے. اگر آج بھی انسان ہم سب سچی توبہ کر لیں اور کل سے فجر کی نماز کا ارادہ کر لیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. رمضان میں 5:15 ہو رہی تھی، اب 5:40 پہ 25 منٹ لیٹ ہے، لیکن ابھی 2 صف بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے اور رمضان میں وہاں تک امام کو جگہ نہیں ملتی آنے کی شروع، امام کو جگہ نہیں ملتی. رمضان میں فرض اور عید کے بعد مستحب، یہ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ جب ہماری مسجد آباد ہوگی، ہمارے گھر آباد ہوں گے، سکون ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا، حکمران بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اس ملک کو قابل رشک بنانے کی توفیق عطا فرمائے.